Om Shanti. Good morning. आज बाबा ने विशेष तीन बातों को स्पष्ट किया। पहला तो हमारा फर्स्ट लेसन है आत्मा। तो बाबा ने बार बार आत्मा का लेसन पक्का कराया, क्योंकि जब तक हम आत्मा नहीं समझते तब तक गाड़ी आगे नहीं खींच सकती। बाबा से बातें करनी है तो भी आत्मा समझना है, किसी के व्यवहार के में आना है तो भी अगर ये पाठ पक्का है तो व्यवहार भी अच्छा होता है। तो बाबा ने बार बार आत्मा 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 करके बच्चों को पाठ पक्का पढ़ाया। दूसरी बात, बाबा ने कहा कोई श्राप देते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बद्दुआएं देते हैं, लेकिन वो श्राप वो बद्दुआ लगती नहीं है। श्राप किसका लगता है? जो ब्राह्मण आपस में गुस्से में भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो श्राप लगता नहीं है। श्राप लगता है जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं या कोई तांत्रिक विद्या करते हैं, वो श्राप देते हैं, वो किसी का बुरा करते हैं, वे किसी का नुकसान करते हैं। तीसरी बात बाबा ने बताई कि कहते हैं ईश्वर अर्थ सफल करो, लेकिन ईश्वर का पता नहीं, ईश्वर जब तक आए नहीं तब तक वो सफल कैसे माना जाए? वो लोग सफल करने के लिए गुरु को देते हैं कि हमने ईश्वर अर्थ सफल किया जिससे हमें दूसरे जन्म में प्राप्ति होगी। लेकिन बाबा कहते हैं जो डायरेक्ट ईश्वर आते हैं और उसके कार्य में सफल करते हैं उसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। वो एक जन्म भी नहीं 21 जन्म मिलता है, क्योंकि ये सत्य के कार्य में लगता है, ईश्वरीय कार्य में लगता है। तो आज अभी बाबा के शब्दों में सुनेंगे। बाबा हमें विविध बातों से बहुत सुंदर बातें समझा रहे हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, आज तो तारीख है 21/11/2025 शुक्रवार। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। आज की बोली से प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। श्राप देते हैं तो कोई ज्ञानी नहीं कहेंगे। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहां शरीर लेकर पार्ट बजाने। आत्मा ही पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पार्ट बजाते हैं। ये है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते। बाबा आकर के हमें आत्मा का ज्ञान देते, आत्म अभिमानी बनाते, ये भी किसी को पता नहीं। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 बर्थ जन्म से लेकर मिनिमम एक दो जन्म होते हैं, अधिक से अधिक 84, कम से कम एक दो। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का कम पार्ट होता है, थोड़ा पार्ट होता है, लेकिन यहां तो सब ज्यादा पार्ट बजाने वाले बैठते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। उनको आत्मा का पता नहीं है तो ना खुद को जानते ना पिता को जानते। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप नहीं है। श्री कृष्ण तो निराकार नहीं कहेंगे, साकार में ही उसको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हरेक आत्मा में पार्ट तो नूंधा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं, क्योंकि खुद ही नंबर वार आत्मा समझते हैं तो फिर समझा भी नंबर वार ही सकेंगे आत्मा का। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, लोगों को आत्मा आत्मा कहेंगे, कितना भी आत्मा का ज्ञान समझाओ फिर लास्ट में बोल देंगे हाँ हमारे में भी आत्मा सो परमात्मा। नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनते हैं। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनों के लिए कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र वर्ण धर्म वाले थे जो ब्राह्मण बने फिर देवता बने, तो जो देवता बनते हैं उनके लिए ही कहेंगे कि वो पहले शूद्र धर्म वाले थे। अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो, अभी हमारा एक ही कुल है ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण कुल की डिनेस्टी नहीं होती, बस एक जन्म हम ब्राह्मण बने फिर देवता बन जाएंगे, उसके बाद उसकी परंपरा नहीं चलेगी। ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते हैं, जब राजा ही करेंगे तो फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजा ही करते हैं न शूद्र कुल राजा ही करते हैं। कौन राजा ही करता है? कोई नहीं करता, लोकतंत्र है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वो राजाओं की भी राजाई चली गई और जो हम देवता थे वो भी राजाई नहीं करते, और अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी हमारी राजाई नहीं है, दोनों की राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है, लोकतंत्र है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, क्यों नहीं है? ब्राह्मणों का राज्य नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, वो बाबा बताते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं, ये है सिर्फ संगम युग भी नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं तो दो कलाएं कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? त्रेता युग वालों की महिमा नहीं करेंगे, लोग तो सतयुग वालों को कम जानते हैं, त्रेता युग वालों को ज्यादा जानते हैं, इसलिए उनकी महिमा ज्यादा करते हैं। गिनने की महिमा थोड़ी होती है, बाबा कहते हैं सतयुग से त्रेता में आए दो कलाएं कम हो गई, उसकी थोड़ी महिमा गाई जाती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, सत्युग को तो नया कहेंगे। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वो पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं तो बुद्धि भी कनिष्ठ हो जाती है, शूद्र बन जाती है, इसलिए उनको कोई स्मृति नहीं रहती है। उनको और भी बाबा ने कहा, कनिष्ठ बुद्धि कहा, शूद्र बुद्धि कहा और पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। अब इतना नीचे गिर गए, उनको फिर कहां स्मृति कुछ होगी। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। हम किसकी पूजा करते हैं उसके बारे में भी सोचते नहीं हैं, इतने पत्थर बुद्धि हैं। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो। एक्चुअली तो बाबा निराकार है, अजन्मा है, लेकिन उसके कर्तव्य को हम जानते हैं, इसलिए कहा उनके जीवन को जानते हैं। उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो तुम, मात पिता हम बालक तेरे कहते हो, तो जरूर बाप आया होगा। तब तो सुख घनेरे दिए होंगे। बाप कहते हैं, बाबा उसका आंसर देते हैं, बाप कहते हैं, मैं आया हूं अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हो। कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना, जो बाहर के ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ करते हैं उसको भी ब्राह्मण तो कहते हैं। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं उस ब्राह्मण में और हम ब्राह्मणों में क्या फर्क है, वो बाबा बताते हैं। वो ब्राह्मणों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। वो है कलयुगी, इसलिए उनको अपने धर्म का पता नहीं कब स्थापन हुआ। और बाबा कहते तुमको सब ज्ञान है क्योंकि तुम हो उच्च कोटि के ब्राह्मण। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, क्या क्या बाबा कर रहे हैं देखो, बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। बाबा आकर के बच्चों की क्या सेवा करते हैं, क्या सर्विस करते हैं, तीन बातें बताई। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। हम केवल ईश्वरीय सेवा के लिए हैं, और कुछ कार्य हमें नहीं करना है, बस पुरुषार्थ करना है और सेवा करनी है। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप, सर्विस करते सुख का रास्ता बताया, अब क्या कहते हैं? बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं किस लिए? मुक्ति के लिए। जरूर जीवन में बंधन है, जब बंधन है, दुख है, समस्याएं हैं, तब तो मुक्ति चाहते हैं। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? हमको तो बाबा ने घर चलने का बोला और उनके लिए क्या बताया? जो कलयुगी हैं, बाबा के नहीं बनते हैं, ईश्वर के नहीं बनते हैं, कहा तुम बच्चे जानते हो वित्राही त्राही करेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे, जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी। लास्ट में तो करते हैं, अभी भी कई नेचुरल कैलेमिटीज आती है या कोई और प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं तो कितने दुखी होते हैं, अभी भी हाय हाय करते हैं। यूरोपवासी यादव भी है, बाप ने समझाया है, यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। क्यों यादव कहा जाता है? एक कहानी बाबा ने फिर उसको शॉर्ट में बताया, दिखाते हैं पेट से मूसल निकले फिर श्राप दिया। एक स्टोरी है शास्त्रों में कि पेट के अंदर बारूद भर दिए, हथियार भर दिए, फिर किसी गुरु की मजाक किया कि बताओ अंदर से क्या निकलेगा, अंदर क्या है। वो गुरु गुस्से हो गए और कहा जो भी निकलेगा तुम्हारे कुल का नाश करेगा। तो सच में जब अंदर बारूद निकले तो उनके कुल का नाश हुआ, माना विनाश हुआ। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, ब्राह्मण किसी को श्राप देते नहीं हैं। उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं, वो तांत्रिक के पास या भोपा के पास जाते हैं ना कि हमको किसी की नजर लग गई है या हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, वो आप उतारो। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना दे देवे। कोई मांगने भी आता है दर पर, कोई सन्यासी या गेरुए कपड़े वाला या कोई, तो कहेंगे कुछ नहीं देंगे तो ये श्राप देके जाएगा, या उसको कुछ भी आप बोलेंगे तो वो श्राप दे देगा। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। बाबा तो कई बार कहते हैं ना, श्राप अपने आप के ऊपर देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, बाबा का बन के चले जाते, मन अपने आप पर श्राप करते। बाकी एक दूसरों को कोई श्राप दे सकता नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। वो तांत्रिक लोग हैं, वो करते हैं, वो पैसे कितने कमाते हैं। लोग डर जाते हैं, अभी हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, वो जितना मांगे इतना देते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते, वो तांत्रिक लोग काम करते हैं, भोपे आदि करते हैं। जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्ति करने वाले, वो काम ये नहीं करते। बाबा ने ये भी समझाया है, अब बाबा दूसरी बात बताते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। आज लोगों के भी, मनुष्यों के भी ब्रह्मा नाम रख देते हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं कि ऊपर जो तीन चार मुख वाला ब्रह्मा है वो ब्रह्मा है, और प्रजापिता कहने से ये समझेंगे यहाँ कोई कार्य किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो प्रजापिता यहाँ है। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान है, नाभि आदि की कोई बात नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है, इसलिए बाबा ने हर ज्ञान का, हर सब्जेक्ट के चित्र बनवाए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाए फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब भट्टी बनी तो नाम दिए, सब बच्चों के नाम बदल दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण आए भी गए भी, आते जाते रहते हैं, निश्चय बुद्धि बन बैठते भी हैं। बाबा कहे ब्राह्मणों की माला नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते। ग्रहचारी बैठती है, अभी बाबा बहुत सुंदर बात बताते टॉपिक बदल के। बाबा तो जवारी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, बाबा अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है, हम ब्राह्मण दैवी कुल धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेते। अगर सीढ़ी नहीं उतरेंगे तो एक ही युग में तो इतने सारे जन्म नहीं लेंगे, 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। बाबा ने पूरा हिसाब करके सीढ़ी का चित्र बनवाया। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे भी स्थूल में भी बाबा अभी एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो मोतियों की माला होती है, मोती गोल होते हैं ना, तो लुढ़कते रहते हैं, गिर जाते हैं, फिसलते हैं, इसलिए बाबा उसका एग्जाम्पल देते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहां हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है, कहां ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है, वो छोटी माला स्थूल माला बनाने में भी मेहनत है, तो बाबा कहते ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, बाबा ने समझाया है स्लोगन बनाओ। कौन सा स्लोगन बनाओ? अभी तो बहुत प्रकार के स्लोगन बनते हैं, पूरे स्लोगन्स की किताब बन जाती है। बाबा कहते स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। क्यों? वास्तव में बाबा कहते वैल्यू तुम्हारी है। अब दूसरा एग्जांपल बाबा देते, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। आज बाबा ने हीरो हीरोइन माना टॉप वाले नहीं, लेकिन हीरे जैसा तुम बनते हो, इसलिए हम हीरो हीरोइन है। फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बन जाते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? बाबा अक्सर करके कौड़ियां बोलते हैं स्थूल धन को, कि जब तुम हीरो हीरोइन बनते हो, तुम हीरे तुल्य बनते हो, तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? तो कई कहते हैं ना कि अरे हमको तो घर में रहना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, तो धन कमाना पड़ता है। तो बाबा इसका जवाब देते, ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। घर में रहकर भी बाबा कहते हीरे जैसा बन सकते हैं। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा के सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तो बाबा ने कहा ये है हीरे जैसे, ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। इस चित्र को माना लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? पहले जब आए तो ऐसा नहीं बोलते थे तुमने कितने ग्रुप समझाए, कितनों को ज्ञान दिया ही नहीं बोलते थे, कहते तुमने प्रजा कितनी बनाई। तो ये कॉन्शियस रहता था कि हम जितनों को समझाते हैं ना, वो सब हमारी प्रजा बनेंगे। वह इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए कहा जाता है कोटों में कोई, स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, सबको थोड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, सब स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं पढ़ाई में बुद्धि में, वही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं एक क्लास में, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं, जैसे प्रोत्साहन देते हैं ना कि अगली बार और उमंग आएगा तो फर्स्ट में आएगा, तो सेकंड वाले को भी प्राइस दे देते हैं। ये भी ऐसे है, यहां तो प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं 100 भी नंबरवार है, वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, जो 8 है वो पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, बाकी सब प्लस में। फिर कला कम हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है, तो नंबर होंगे ना, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, सेकंड लक्ष्मी नारायण, थर्ड लक्ष्मी नारायण, ऐसे। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं, श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया था, श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं। आज बाबा ने कहा कृष्ण के तो गोप गोपियां होते नहीं, गोप गोपियां कहाँ होते हैं, संगम पर, अभी हम बाबा के गोप गोपियां हैं ना, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है, वह तो है सतयुग का प्रिंस, तो कृष्ण माना गोप गोपी माना मुरली सुनने वाले, तो कृष्ण सतयुग में कहां मुरली सुनाएगा, मुरली तो अभी है, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, वहां पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो, वहां तो ऐसा कहेंगे नहीं, बाप फिर टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बहुत एजेड हो जाते हैं ना, बड़ी पोस्ट पर भी पहुंच जाते हैं तो भी टीचर के पांव छूते हैं कि इसके कारण मैं यहां तक पहुंचा। बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके, बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है, जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं, गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं, गाते भी हैं सतगुरु बिगर सदगति नहीं, सदगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते हैं, गुरु तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं, तुम्हें किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं, बाबा से मांगना है कि नहीं, बाबा से भी नहीं, कहा भी जाता है मांगने से मरना भला, सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें, लोगों को होता है ना हमको भविष्य में कैसे मिले, अभी तो है हमारे पास, हमें दूसरे जन्म में भी हमको अच्छा घर मिले, धनवान घर मिले ये सोचते हैं, तो समझते हम अपने पैसे ट्रांसफर कैसे करें। ये पैसे स्थूल तो शरीर छोड़ने के बाद ले नहीं जा सकते, तो उसकी विधि क्या है। दूसरे जन्म में भी हमको घर मिले, अच्छा धन मिले, तो उसकी विधि है दूसरे जन्म के लिए वो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो उसका रिटर्न इसी पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। वो समस्या को दूसरे जन्म में मिलेगा, लेकिन बाबा कहते वो स्थूल दान ये देहधारी गुरु को करते हैं तो इसी जन्म में उनको मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना, प्रभु को तो कोई जानते ही नहीं, वो भी करना तो चाहते हैं ईश्वर अर्पण, लेकिन ईश्वर को जानते नहीं, गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं, वारिस नहीं होता है, उनको अपना कोई संतान नहीं होता है, तो सब गुरु को दे देते हैं। यहाँ भी हम कहते हैं ना, आपको बेटा नहीं है बेटी नहीं है तो बाबा को बेटा बनाओ। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं, कायदे अनुसार नहीं देते हैं, देहधारी गुरु को देते हैं तो ईश्वर अर्पण तो हुआ नहीं। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवास हूँ, इसलिए मैं आता भी भारत में हूँ, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है, बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया। वो देहधारी गुरु को देते हैं तो इसी जन्म में मिलता है, और तुम डायरेक्ट ईश्वर को अर्पण करते हो तो भविष्य 21 जन्म के लिए मिलता है। वो जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, है सब दे समझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बनते हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, एक ही रास्ता है, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं, वर्षा देने वाला एक ही है, उसको ही याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाता है। बैच पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा यह सब अर्थ सहित बैजेस, कोई भी बैच पहनो तो बाबा कहते तुम्हारे जितने बैच हैं सब अर्थ सहित हैं। ये तो जीए दान देने वाला चित्र है, इसकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है तो बड़ा बैज लगाना चाहिए। तो जरूर कोई दूर से पढ़ सके, अच्छा बाबा ने लास्ट में कहा बैज बड़ा होना चाहिए, मीठे मीठे सिकिलद है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सारी मुरली का एसेंस इस दो पॉइंट्स में आ जाएगा। फिर से मुरली रिपीट हो जाएगी। पहली पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंद से निकाल सबको मुक्ति में ले जाना है। अभी आज का वरदान, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से, परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। आज का स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एक एडजस्ट होने की कला आ गई तो बाकी सब कलाएं अपने आप आ जाएंगी। एडजस्ट हो गए तो बाकी कुछ आगे रहा ही नहीं। अव्यक्त इशारे, टॉपिक चल रही है अशारीरिक व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशारीरिक बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।